बूढ़ी माँ ने तारापरी और अमन की आत्माओं को उनके पिछले जन्म से बुला लिया था। अगर वो उन्हें ज्यादा देर वहां रोकती तो मान की जान जा सकती थी। सुबह होने से पहले तिलिस्म की रोटी मान के घाव पर लगना जरूरी था, लेकिन अमन और तारापरी ये जानना चाहते थे कि आखिर उसके बाद क्या हुआ होगा। क्या राधा उस दुष्ट राजा के पास गई होगी, और ऐसा क्या हुआ था उस जन्म में जो इतना भयानक था कि एक साथ 300 से ज्यादा लड़कियों की आत्माएं बन बैठी थीं। लेकिन आगे क्या हुआ ये बूढ़ी माँ ने बताने से मना कर दिया था। उसने कहा था, जब सही समय आएगा तब खुद ब खुद तुम दोनों को पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ होगा। तारापरी और अमन ने राहत की सांस ली थी। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए थे। मान बेहोश पड़ा हुआ था, जैसे कि उन दोनों भाइयों की आत्मा एक थी। राधा के पिछले जन्म में जाकर जो कुछ भी तारापरी और अमन ने देखा था वो सब उसके जहन में अपने आप ही आ गया था। वो करिश्मा जी के पास से उठा और उसने जाकर तारापरी और अमन को एक साथ गले लगा लिया था। करिश्मा जी ये देखकर काफी हैरान थीं। मान को होश में आते ही सारी बातें याद आ गई थीं। तारापरी और अमन हैरानी से मान को देख रहे थे। तब मान हैरानी से उन दोनों को अपनी ओर देखता हुआ बोला था, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप दोनों? शायद आप लोग भूल रहे हैं, भले ही मैं आप दोनों के साथ नहीं था, लेकिन मेरी रूह तो अमन भाई के साथ थी, जिसके द्वारा घर से निकलने पर आप दोनों के साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ मुझे याद है। ये सुनकर अमन मुस्कुराने लगा था। तारापरी ने एक नज़र अमन को देखा और फिर मान को देखा था। वो देखने लगी थी और सोचने लगी थी कि मोहन तो वाकई एकदम अमन और मान के जैसा था। तभी करिश्मा जी तारापरी के पास आईं और बोली थी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, जैसे ही मेरे बेटे पर वार हुआ तो मेरे मन में तुम्हारे खिलाफ ना जाने कितने नेगेटिव पॉइंट आ गए थे। प्लीज़ तारा बेटा, माफ़ कर दो मुझे, ये कड़ा मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए ही तो तुम्हें दिया था, और जब अपने पास तुमने इतने बड़े सांप को पाया तो तुम्हारा डरना लाजमी था। आखिर हो तो तुम एक इंसान ही, और इंसान डर कर कुछ भी कर सकता है, और तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। जिस हिम्मत के साथ तुम मेरे बेटे के साथ गई उसकी मदद की, तुम्हारी जगह कोई और होता तो न जाने कब का डर कर भाग गया होता। तारापरी ने कहा, करिश्मा मैम आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे मन में आपके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप एक माँ हैं, और माँ का ये सब सोचना और अपने बच्चों की भलाई के लिए दूसरों के लिए गलत ख्याल आना बड़ी ही नॉर्मल बात है। एंड डोंट वरी, मैं आपके दोनों बेटों का ध्यान रखूंगी, तारापरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और करिश्मा भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी और वे दोनों गले लग गईं। अमन और मान दोनों सास बहू का प्यार देख रहे थे। तब मान झूठ मूठ रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, ओहो देखा भाई आपने, दोनों एक दूसरे को कितना सारा प्यार कर रही हैं, दोनों सास बहू ने मिलकर हम दोनों को पराया कर दिया। ऐसा कहकर मान झूठ मूठ रोने की एक्टिंग करने लगा था। तब करिश्मा जी बोली, ओ मेरे छोटे से रोटी डू बच्चे, आ आ जल्दी तुझे भी गले लगा लूं। ऐसा कहकर अमन और मान भी उन दोनों के पास चले गए, और करिश्मा जी ने तारापरी सहित उन्हें भी गले से लगा लिया था, और इस तरह से उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली की तरह एकदम कंप्लीट लग रही थी। कुछ देर बाद करिश्मा जी ने तारापरी, अमन और मान से कहा, तुम सब बड़े ही लंबे सफर से आए हो, और सुबह होने में भी केवल कुछ ही समय बाकी है। कल दिन में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए आप तीनों जाओ और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। उन तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और वे तीनों अलग अलग दिशा में अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे थे। जाते जाते वे तीनों पलटे और एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। तारापरी का मन नहीं कर रहा था कि वो अमन या मान से अलग रहे। जब से उसने पिछले जन्म के मोहन को देखा था तब से उसका मन कुछ अलग सा हो गया था, इसीलिए वो धीमे धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ चली थी। तारापरी जैसे ही अपने कमरे में गई और कुंडी लगाकर उसने बेड की ओर देखा तो वो हैरान रह गई थी। अमन और मान उसके बेड पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तारापरी खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। तभी तारापरी उन दोनों के पास गई और बोली थी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तब अमन और मान ने कहा, हमने तुम्हारी आंखों में देख लिया था कि आप नहीं चाहती कि हम दोनों आपसे दूर जाएं, इसीलिए यहाँ आ गए हैं। तारापरी अमन और मान की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। तब मान ने कहा, अब आप वहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? आइए और थोड़ी देर सो जाइए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। कल शाम को शादी है हमारी, तो आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। हम दोनों आराम करें ना करें वो चलेगा, क्योंकि हम दोनों आधे इंसान हैं तो आधे जिन, लेकिन आप तो एक पूरी की पूरी इंसान हैं, तो आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। तारापरी उन लोगों की बात सुनकर उन दोनों के बीच में जाकर बैठ गई और बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप दोनों प्लीज़ यहीं रहिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब अमन ने कहा, डोंट वरी मिस तारा, आप आराम से सो जाइए, हम है ना, हम दोनों आपका तब तक पहरा देंगे और किसी भी बुरी शक्ति को आप तक नहीं पहुँचने देंगे। ऐसा कहकर अमन ने तारा को बड़े ही प्यार के साथ बेड पर लेटा दिया और मान ने उसके ऊपर एक हल्की सी चादर उढ़ा दी, और वे दोनों तारा से हल्की हल्की सी दूरी बनाकर उसके पास ही लेट गए थे। तारा जल्दी ही सुकून भरी नींद सो चुकी थी, और करीब वहीं दूसरी ओर अमित उस जंगल में पहुंचा था जहां उसकी वो छिपकली लास्ट टाइम दिखी थी। वहां जाकर उसने आसपास अच्छे से देखा था, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया था। तभी तिलिस्मी घर में रह रही प्रेमा की नजर अमित पर पड़ चुकी थी और अमित के द्वारा किया गया हर एक गुनाह उसे याद आने लगा था। प्रेमा का पेट अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। प्रेमा जानती थी कि जब तक वो इस घर के अंदर है अमित उसे नहीं देख सकता था, और अपने गुनाहगार को अपने इतने करीब पाकर उसका खून खौल उठा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे उसी वक्त मार डाले, लेकिन नहीं, वो कुछ सोचकर केवल उसे देखे जा रही थी। तभी अमित को वहां राख पड़ी हुई दिखाई दी थी। उसमें से आधी से ज्यादा राख तो उड़ चुकी थी। अमित ने जैसे ही वो राख अपने हाथ में ली, उसने जान लिया था कि ये राख उस छिपकली रज्जो की ही थी। अमित ने उस राख को उठाया और उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगा था। देखते ही देखते उस राख से वहां तीन छिपकलियां बनकर खड़ी हो गई थी। प्रेमा ये देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि उन तीन छिपकलियों में से हर एक छिपकली का साइज एक एनाकोंडा सांप के जितना था। प्रेमा ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, और तभी एकाएक वे छिपकलियां तीनों एक जगह मिलकर बड़ी सी बिच्छू में बदल गई थी। अमित उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा था और बोला था, अमन, तूने उस छिपकली को तो मार डाला था, लेकिन तू ये भूल गया, उस छिपकली की राख अगर उसके मालिक के हाथ लग जाए तो वो उससे तीन गुना ज्यादा शक्तिशाली जानवर बना सकता है। अब देख ये तिलिस्मी बिच्छू किस प्रकार तेरी खूबसूरत दुनिया को डसेगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर वो पागलों की तरह से हंसने लगा था, और फिर उसने देखते ही देखते उस बिच्छू पर एक और मंत्र फूंका, जिससे वो एक बड़े ही खूबसूरत मर्द में बदल गया था। काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे एक इंसानी मर्द का रूप दे दिया था, जो दिखने में बेहद ही आकर्षक था।
जैसे ही वो बिच्छू एक इंसानी रूप में आया, उसने झुककर अमित को सलाम पेश किया और बोला था, मेरे मालिक, हुक्म कीजिए, ये बिच्छू किसे ढसकर अपनी प्यास बुझाए, और याद रखे मेरे मालिक, मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता है। ऐसा कहकर वो बिच्छू जोर जोर से हंसने लगा था और उसे देखकर अमित भी हंसने लगा था, और अमित एकदम से सीरियस फेस करके बोला था, मुझे तारा चाहिए, या तो वो मुझे जिंदा चाहिए या फिर उसे मार दो, लेकिन उसे मारने से पहले कोशिश ये करना कि उसे जिंदा मेरे पास ले आना, क्योंकि मुझे उसका खूबसूरत जिस्म चाहिए, लेकिन अगर तू उसे मेरे पास नहीं ला सका तो उसकी जान ले लेना, और याद रखना, अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। अमन और मान की जान तब तक नहीं ली जा सकती है जब तक वो तिलिस्मी पत्थर उन दोनों के पास है, लेकिन उनसे तारा को तो दूर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर तारा की शादी उन दोनों से हो गई तो उनके बच्चे को होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो समझो पूरी काली दुनिया का अंत हो जाएगा। तब वो बिच्छू बोला, आप फिक्र न करें मेरे मालिक, मैं आज ही तारा को आपके पास ले आऊंगा, और अगर उसे नहीं ला पाया तो उसकी जान ले लूंगा, लेकिन उसकी शादी अमन और मान से नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर वो अपने मालिक से विदा लेकर गायब हो चुका था। प्रेमा उन दोनों की एक एक बात सुन चुकी थी, लेकिन वो अकेली बिचारी कर भी क्या सकती थी। तभी उसने देखा वो काली शक्तियों का मालिक अमित उसी पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ था जिस पेड़ के पीछे उसने उसकी इज्जत लूटी थी, और अब जबकि प्रेमा का तिलिस्मी घर वहां था तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये उसके घर को देख ना ले। ये सोचकर वो सांस थामकर अपने घर के एक कोने में छिपी हुई अमित को ही देख रही थी। तब अमित ने उस पेड़ को छूकर कहा था, भाई पेड़ महाराज, उस दिन अगर तुम यहां नहीं होते तो हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत सुख नहीं मिलता, जो उस दिन उस लकड़हारे की बेटी के साथ तेरे इस पेड़ के पीछे मिला था।